الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بھائیو، آج ان شاء اللہ تعالی 17ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ اور انشاءاللہ جائزہ لیں گے. 17واں پارہ سورہ انبیاء سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے یہ وہ سورت ہے، اس کا غالباً اس کا ریفرنس بھی جو ایک علامتی نام جو بھی لیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں. اس میں بہت سارے مضامین اس سورت کے اندر آئے ہیں، جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام خاص طور پر ان کی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آپ جس دعوت توحید کے علم بردار تھے، یہ وہی جو ہے وہ دعوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقیقی وارث ہیں، اور جو ہے ان کو جھٹلانے پہ فرمایا گیا کہ پھر اگر تم کفار مکہ کو کہا گیا کہ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر شامت اعمال اپنی اس کے ذمہ دار جو ہے وہ خود تم خود ہوگے. یہ سورت بھی تقریباً آخری جو حصہ تھا، جو آخری دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مکہ کے اندر، اس کے وسط میں 9 یا 10 نبوی میں، 9 یا 10 سال نبوت کے، یہ سورت جو ہے اس میں اتری ہے. اس میں جیسے میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام، 18 انبیاء کا جو ہے یا غالباً سب سے زیادہ بڑی وہ سورت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ان میں پھر انبیاء علیہ السلام کی مختلف حیثیتوں کا ذکر آیا، کس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام وہ انسان تھے اور انسانوں ہی میں سے تھے، ان کی دعوت کو جو ہے وہ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ کیا وہ دعوت پیش کرتے رہے. وہ ہمیشہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، اس کی توحید کی دعوت دے رہے، اس کی عبادت کی دعوت دیتے رہتے. ان کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا کہ ان کے یہاں ان پہ کس قسم کی ذمہ داریاں ان پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئیں، اور پھر ان کے اعلیٰ کردار کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں کس طریقے سے آزمایا گیا، ان پہ کس طریقے سے ابتلاء اور آزمائشیں آئیں، اور کس طرح ان کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طریقے سے پھر انہوں نے انتہائی ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیا. تو یہ بڑا ایک اعلیٰ کردار جو ہے یہ بھی سامنے آتا ہے. تو اس صورت کے کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مضامین کے اعتبار سے جو ہم اس کو تقسیم کریں، مضامین کے اعتبار سے تو اس کے کل 8 حصے جو ہے وہ بنتے ہیں. پہلے حصے کے اندر جو ہے جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات جو لگانے والے جی قریش مکہ، طرح طرح کے آپ بتائے کہ جھوٹے الزام لگاتے، کہہ دیتے کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ایک بشر ہم ہی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کے بھیج دیا. تو اس کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے وہ بھی انسانوں ہی میں سے تھے، بشر ہی تھے. پھر کبھی کہا جاتا تھا کہ اس نے یہ خود کلام گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھا کے لاؤ پھر ہمیں جو ہے وہ کے جو حصی معجزے تھے جو نظر آنے والے تھے، اس طرح تو اس طرح کے جو ہے الزامات کہتے. تو ان جھوٹے الزامات لگانے والوں کو ہلاکت کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی رویے سے اور تکذیب کا یہ تمہارا رویہ جاری رہا تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے. تو یہ اس حصے میں جو اس کا جو بیان آیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے توحید کا خاص طور پہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی صورت بھی جو ہے مکی صورت ہے، تو توحید کا بیان جو ہے تو اس کے اندر بھی موجود ہے. توحید کا اثبات کیا گیا، مطلب یہ کہ اس کے ثبوت لایا گیا، اس کو مثبت انداز میں، مثبت طور پر توحید کو جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے، اور شرک کی تردید کی گئی. تو یہ دو لفظ جو ہے آپ ان کو اچھی طرح وہ نوٹ کر لیں، یہ لفظ جو ہے عام طور پر اکٹھے استعمال ہوتے ہیں کہ کسی صورت کے اندر توحید کا اثبات کیا گیا ہے، اس کو مثبت انداز میں اس کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور شرک کا ابطال کیا گیا، اس کو باطل، اس کو ریفیوٹ کیا گیا، اس کی تردید کی گئی ہے. تو توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال، یہ دونوں جو ہے یہ جو ہے ثبت سے اور بطل جو لفظ نکلی ہوئی ہے، تو یہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ان کو جان لینا چاہیے کہ یہاں پہ توحید کو تو پیش کیا گیا، پوری کائنات کا ایک مقصد ہے، اور یہ اس کائنات کو تخلیق کیا ہے جو ہے اس کے خالق نے، और एक मकसद के तहत जो है वो इसको बनाया है। और फिर इसी तरह इसके साथ ही आगे भी इंसान की तखलीक का भी जो है बताया गया कि इन दोनों की इस कायनात में और फिर इसके अंदर जो इंसान को बनाया गया उसका मकसद ये है कि वो आजमाइश करे, जो है वो देखे कि कौन जो है वो अच्छे अमल करता है। फिर जो शिर्क की तरदीद की गई है कि जैसे कुफार मक्का का ख्याल था कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, तो उसकी जो है तो उसकी तरदीद की गई है। तौहीद की दलीलें जो है वो दी गई है और कहा गया है कि अगर ये जमीन और आसमान के खुदा अलग अलग होते तो तुम देख सकते हो कि फिर किस कदर जो है वो एक फितना बरपा होता है, किस तरीके से डिसऑर्गेनाइजेशन होती कि जो है कोई एक एक को कंट्रोल करता हो एक दूसरे को, तो किस तरीके से ये जो हारमोनी, ये जो आप देख रहे थे कि जो तंजीम नजर आती है इस पूरी कायनात के अंदर, ये कैसे मुमकिन थी अगर दोस्त खुदा होते, मुख्तलिफ खुदा होते। तो इस तरह जो है दलील लाएगी। फिर उसके बाद जो है वो जो तीसरा हिस्सा है अगर इसका, उस पे जो है वो उस पे भी उस वहां भी तौहीद को जो है वो साबित किया गया मुस्बित तौर पर, और लेकिन तौहीद पर जो है वो आफाकी दलीलें जो है वो लाई गई है कि आफाकी दलीलें लाने के साथ साथ फिर जो उनको आफाकी दलीलें हैं कौन सी, आफाकी दलीलें ये हैं कि ये जमीन और आसमान को जो इसका जिक्र किया गया है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पहाड़ हैं, ये दिन रात हैं, ये सूरज और चांद चांद सितारे हैं, ये जो अपने अपने जो है मदारों के अंदर जो है वो चल रहे हैं। फरमाया कि इन सब का खालिक, इनको मदारों के अंदर चलाने वाला जो है वो अल्लाह ताला की जात है। फिर यहाँ पे जैसे जो पिछले से के अंदर जो है वो तखलीक कायनात का जो है वो एक मकसद बताया गया, तो यहाँ उसी जैसी बात कही गई है कि इंसान को जो है यहाँ पे जो है जो जो इंसान को भी एक खास मकसद के तहत पैदा किया, और यहाँ पे इस दुनिया के अंदर उसको खैर और शर के इम्तिहान से जो आजमाया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि फिर मौत के बाद उसकी वापसी भी जो है उसी अल्लाह की तरफ जो है वो होगी। चौथे से के अंदर फिर मुशरिकीन के खुद साख्ता खुदाओं की बेबसी का जो है वो बयान किया गया है कि किस तरीके से ये बिल्कुल बेबस हैं, इधर अपनी मदद करने पे भी जो है वो कादर नहीं है, कुजाज है कि ये दूसरे लोगों की सुने और इसके जो है उनको मदद कर सके। तो फिर इन मुशरिकीन को बताया गया है कि अब इनके जो है वो दिन इस जमीन में जो है वो गिने जा चुके हैं। ये एक प्रोफेसी थी, ये एक पेशन गोई थी, और फरमाया कि ये देखते नहीं है कि किस तरीके से हर जमीन इन पर हर तरफ से तंग होती जा रही है, और ये जितने अपने तई ये कोशिश कर रहे हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जो है उन पे जिंदगी तंग कर दें और उनको इससे निकाल दें, लेकिन वो दरअसल वो खुद जो है वो घेरे के अंदर आ रहे हैं, और ज्यादा देर ये गालिब इनकी ये हैसियत गालिब हैसियत नहीं रहेगी। और ये एक ऐसी पेशनगोई थी जो बहुत कुछ चंद साल के अंदर ही जो है वो पूरी हो गई है। तो इनको यहाँ पे भी जो है एक धमकी भी दी गई है और एक प्रोफेसी भी उनके लिए है और एक पेशनगोई है कि तुमने ये अपना रवैया जारी रखा तो भारत तुम बहुत जल्द मगलूब होने वाले हो। पांचवें से के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि अल्लाह ताला ने उनको फुरकान से नवाजा, और फुरकान से मुराद या फर्क करने वाली चीज जो है जो बिल्कुल वाजे तौर पे हक को बातिल से और खरे को खोटे से अलग करने वाली है, वो जो है उससे नवाजा गया, और वो उससे मुराद तौरात है। उसके साथ ही फिर ये फरमाया गया कि उसी तरह आप जो है जिस तरीके से उन दो पैगंबरों को जो है अल्लाह ताला ने जो है उससे नवाजा, मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथ उनके भाई जो थे मददगार के तौर पे उनको तौरात दी, इसी तरह आप एक बाबरकत जिक्र कुरान हकीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया गया है। तो ये जो है इस तरीके से जो है साबित किया गया है कि ये बिल्कुल कंटिन्यूटी है, पैगम्बरों को अल्लाह ताला इस तरीके से जो है वो रिसालत भी अता करता है और फिर उनके साथ साथ उनको किताबें भी अता करता है, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पहले हो चुका है। फिर उसके बाद जो छठा हिस्सा है उसके जो उसके अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो काफी तफसील के साथ है, उनके किरदारों पे जो है वो रोशनी डाली गई है, उनके दावत का जो है वो बताया गया है, और खासतौर पर इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ही तफसील से है कि किस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में किस तरीके उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद की दावत सारी जिंदगी उसको अपना मतमय नजर बनाए रखा, और अपनी जिंदगी की तमाम काविशें और कोशिशें, और अपनी औलाद भी, हत्ता कि उन्होंने औलाद भी तलब की और मांगी, तो इसी मकसद के लिए इसी काम के लिए उनका जिक्र बहुत तफसील से हमें मिलता है। और फिर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इसके अंदर जो है मौजूद है, जैसे मैंने कहा कि 18 अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र इसमें, और सबसे ज्यादा जो है इन्हीं का जो है, तो इसमें नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, और दाऊद अलैहिस्सलाम, और सुलेमान, और अय्यूब, और इस्माइल, और इदरीस, और ज़ुल्कफ़्ल, और सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम का इनका जिक्र मिलता है। और इन सब के बारे में इनकी जो खसूसियात हैं, इनके बारे में जो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको जिस खास वस से नवाजा था, उनका भी जहाँ पे वो जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इन सबको जो है ये जिस आजमाइश से गुजारा, उसके अंदर वो सब्र, इस्तकामत और नेकी के रास्ते पर जो है वो साबित कदम रहे, और इसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। और फिर इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इसी के साथ है। इस तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से जो है एक लर्जिश हुई, तो फिर जो है मछली ने उसकी बिना पे वो बाहर निकल चले गए, अपनी कौम को छोड़कर दावत को जो है वो तर्क कर दिया और छोड़ के चले गए। तो अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट में पहुंचा दिया, और वहां फिर मछली के पेट से उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, तोबा की, और फिर जो है वो दुआ मांगी, जिसे हम आयत करीमा के नाम से जानते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के नहीं है, मैं खुद ही अपनी जान के ऊपर जो है वो जुल्म करने वाला हूँ। और ये कमोबेश जो है ऐसी दुआ है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो मांगी थी कि अल्लाह तूने अगर मुझ पर रहम ना किया हम पर, तो हम खसारा पाने वालों में से हो गए। तो इस तरह की जो है वो दुआ है। और इसका आपको पता है, इस ये जो आयत करीमा का जो हमारे के नाम से जो आयत मारूफ है, तो ये डिस्ट्रेस के वक्त और मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, इसकी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी पढ़ने की जो है वो ताकीद फरमाई है। इसके अंदर बड़ी जबरदस्त तौहीद है, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू है, और अपने गुनाहों की जो है वो माफी है मांगने की जो है वो एक किस्म का जो है वो सबक है, या माफी मांगने की दरख्वास्त है। तो लेकिन यहाँ हमारे आप देखें कि इस आयत करीमा के साथ तो मामला ये है कि इसको एक वजीफे के तौर के पे जो इज्तिमाई तौर पे लोगों ने जो है एक इसका एक चाल चलन रख लिया है कि इसको 1 लाख मरतबा या 2 लाख मरतबा जो इस तरह जो है वो इसका इसको जो है वो पढ़ ले। हालांकि इसका जो हक इस तरीके से अदा नहीं होता कि इसको जो है मजबूरी तौर इज्तिमाई तौर पर एक किसी जो है टाइम पीरियड के अंदर जो है पढ़ लिया जाए और ये इतनी दफा हो गई है बस। हालांकि इसका ये है कि इसकी पूरी जिंदगी इसके ऊपर आमिल हुआ जाए, और खालिस तौर पर जो पहला इसका हिस्सा है तौहीद का हिस्सा, उसको अपनी जो है आपकी अपनी जो समझ और फहम और आपका इदराक है और आपकी जो किरदार है उसके अंदर एम्बेड कर लेना चाहिए। उसको बिल्कुल इस बात पे पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और कोई इलाह नहीं है। और फिर ये है कि मैं खुद ही ऐसा हूँ जिससे मुझसे गलतियां होती हैं, मैं अपने ऊपर जुल्म करता हूँ, खताएं करता हूँ, गुनाह करता हूँ, और ये मेरे ऊपर मेरा अपना जुल्म है, और अल्लाह ताला से जो है बख्शिश की उसे जो है तलब करनी चाहिए। तो ये ऐसी एक एक जो है आयत करीमा ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें हमेशा अपने जो है वो अपने किरदार के अंदर इस पे इसको अंदर शामिल करके इस पे सारी जिंदगी चलने का अज़्म, और इसको बड़े आप कह सकते हैं कि इस पे गौर और तदब्बुर और फिक्र और फहम के साथ और थॉटफुली बहुत ही जो है नोइंगली और थॉटफुली इसके ऊपर जो है हमें चलना चाहिए। फिर इस सूरत के अंदर जो है वो और भी जो है वो दलायल जैसे दिए गए हैं, जिसमें मैंने पहले कहा कि वहां पे बहुत सारे दलायल मौजूद है, तो उन इकट्ठे दलायल को जो है वो जैसे आप देखें तो वहां पे जो है कहा गया कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे इकट्ठे, इससे पहले पूरी कायनात जो थी। जमीन आसमान से मुराद जब भी जिक्र होता है कुरान के अंदर, इससे मुराद होती है कि पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स जो है एवरीथिंग। तो वो फरमाया उसके बारे में कि ये मिले हुए थे सारे, ये एक मैस था सब, और हमने फिर इनको अलग कर दिया है, अलग जो है, और फिर जो इस तरीके से उससे फिर जो अलग सितारे और सैारे और फिर अजरामी फुल्की जो है वो बने हैं। और ये बिल्कुल ऐसा जो है इसकी मुशाबहत है जैसे आजकल एक नजरिया, आपको पता है कि 20वीं सदी के अंदर जो है एक साइंस ने जो दरियाफ्त किया, और वो था बिग बैंग का नजरिया। और ये दरअसल तो अभी जादू है, लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इससे पहले ये बताया कि ये जो है सारी चीजें एक थी, और बाद में इनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से, जिससे साइंसदान अब बिग बैंग कहते हैं, उनसे बिल्कुल उनको अलग कर दिया है, तो वो अलग हो गए हैं। फिर फरमाया एक और हकीकत इसी तरह बड़ी यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे जो अल्लाह ताला ने बताई है, और आप देखेंगे ये उस वक्त जो है ये हकीकत बताई गई कि जिस वक्त इंसानी इल्म जो था, ये जिसे आजकल हम साइंस का इल्म जिसे कहते हैं, इंसानी इल्म जो है इस्तेकाक उस सतह पे था जहां पे जो है इसको अगर आज के साथ कंपेयर करें तो उसकी कोई निस्बत नहीं बनती। मसलन हमें जो ह्यूमन बॉडी है या जो मुख्तलिफ जानवरों की जो बायोलॉजिकल बॉडीज हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा इल्म नहीं था कि ये किन चीजों से बनी हुई, जैसे सेल्स होते हैं और सेल्स किस चीज से बने होते हैं और मादा इसके जो है वो है क्या, इसके अंदर जो है चीज क्या है जो जिससे ये जिस्म बना होता है। तो बुनियादी तौर पर बताया गया कि जो जो हर जानदार को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। अब देखें कि जो भी सेल है, कोई भी सेल, उसका बुनियादी सबसे अहम जो अंसर है वो पानी है। उसके बगैर जो है वो मर जाएगा। अगर पानी नहीं होगा सेल के अंदर तो सेल विल डाई। बुनियादी तौर पर ये जिंदगी और इस हकीकत को बताया कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। और ये भी हमें बहुत अभी 20वीं सदी या इससे 19वीं सदी में आके जो है मालूम हुआ है। फिर मैं कि जमीन में अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, ये एक और साइंस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो मजामीन आते हैं, ये जो साइंसी हकीकतें आती हैं कुरान के अंदर, तो ये बुनियादी मजमून के तौर पे नहीं आती, ये बिल्कुल जिमनी मजमून के तौर पे आती हैं, जैसे तज़किरतन जो है बिल्कुल ऐसे एक जो है वो आप कह लें कि एक साइड पे एक जिक्र इनका आता है किसी चीज का और फिर आगे जल्दी से आगे जो है गुजर के दूसरी बात जो है मजमून जो बात शुरू कर दीजिए। और उसकी वजह यह है कि ये कुरान की बुनियादी जो है टॉपिक्स नहीं है। और वजह यह थी कि अभी तक इंसान का इल्म उस सतह पे नहीं पहुंचा था कि इनको बुनियादी मौजू बनाकर लोगों को ये हकीकतें बताई जाती, तो लोग जो है बड़ी कंफ्यूजन के शिकार होते कि ये क्या जो है ये कि कुरान में क्या चीज बताएगी। लेकिन इनकी तरफ इशारा करके छोड़ दिया। अब जो लोग इस पे मजीद तहकीक करना चाहें और ये लोगों के लिए आप जो बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कुरान से मुतासर हो, किसी न किसी हकीकत से जो इस तरीके से बयान की गई उनसे हकीकत से मुतासर होकर कुरान से जो है वो ईमान ला के मुसलमान हो जाते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों की इस किताब के अंदर वो हकीकतें बयान की गई हैं जो जैसे ये जो माइक्रो वर्ल्ड जो हमें दरियाफ्त हुई है, सब माइक्रोस्कोपिक जो जो दुनिया जो हमें दी है, जो माइक्रोस्कोप बनने के बाद जो दरियाफ्त होने के बाद 17वीं 16वीं सदी के बाद जो हुई है, इससे पहले की चीजें कैसे मालूम थी पैगम्बर इस्लाम को और जो है इस किताब के अंदर कैसे आई है। तो इसके जो ये लोग जिन पे गौर और तदब्बुर और फिक्र करते हैं उस नतीजे पहुंचते हैं कि इनका सोर्स जो है डिवाइन सोर्स है, अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई चीज सोर्स नहीं हो सकता। तो खास तौर पे अहले किताब के लोग और जो है फिर दूसरे भी जो इसी तरीके से फिर जो है वो ईमान ले आते हैं। तो ये बताएगी फिर उसके बाद जमीन में अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, आसमान को महफूज छत बनाया, दिन रात चांद सूरज तारे बनाए जो आसमान में तैर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे हकायक जो अल्लाह ताला ने जो पूरी यूनिवर्स से जो आफाकी दलाइल है ये जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताए हैं। और नबी आखिर में बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमतुल्लिल आलमीन ने दोनों दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए आखिर दूसरी दुनिया के अंदर भी जो है अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत ही रहमत है। इसके बाद सूरह हज है। सूरह हज भी जो इसके बारे में अगर मक्की मदनी का फैसला करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बाज जगहों पे बाज जो तफसीर की किताबों के इसको मदनी और बाज में इसको जो है मक्की लिखा गया। लेकिन दार हकीकत जिन लोगों ने इस पर तहकीक की है वो कहते हैं कि इसका एक हिस्सा तो मक्का में नाजिल हुआ और इसका कुछ हिस्सा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे तो उस वक्त इसका कुछ हिस्सा नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा इसका मदीना में नाजिल हुआ। तो इस तरीके से ये इसकी हैसियत एक बरजखी सूरत की सी है जो है दोनों के दरमियान में जो है, इसलिए इसके अंदर दोनों खसूसियात जो पाई जाती हैं, मक्की खसूसियात भी हैं और मदनी खसूसियात भी जो है वो पाई जाती हैं। इसमें अकीदे तौहीद पे बात की गई है और जजा और सजा पे बात की गई है और इंजार है और जन्नत और दोज़ख़ और क़यामत के मनाज़िर हैं जो मक्की सूरतों की जो खसूसियात हैं। उसके अलावा फिर इसके बाद हिजरत है, जिहाद है, हज कुर्बानी के शरी मसाइल है, अहकाम है जो मदनी सूरतों के जो है वो खासा है। उस तरीके से इस सूरत के अंदर जो है वो दोनों जो है वो बातें पाई जाती हैं। सूरत का आगाज ही बड़ा चौंका देने वाला है और अंजार से कराया गया है सूरत का कि किस तरीके से लोग जो है वो फरमाया कि अल्लाह ताला की कुदरतों का असल में बयान है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ मदारिज के अंदर स्टेजेस के अंदर जो है वो पैदा फरमाया है और फिर इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है लोगों को गौर फिक्र की इसमें जो है वो दावत भी दी है। इसके अगर हम इसके मजामीन के अतबार से इसको देखें तो इसके भी छह हिस्से जो है वो बनते हैं। और पहले हिस्से के अंदर तो मुनकरीन तौहीद व आखरत जो जो जिस मैंने कहा कि चूंकि स्टिल मक्का में बिल्कुल आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाने वाले थे तो वहां पे ये हुआ, तो उनसे फिर जो है तौहीद के मामले के अंदर और आखिरत के मामले के अंदर तो उनसे भी एक जो है मुजादला है, उनके साथ बहस है। और मैं कि ये जो लोग हैं मुशरिकीन है बगैर किसी इल्म की दलील के, बगैर किसी इल्म के जानने के, फॉर श्योर जो हतमी जो यकीनी इल्म है उसके बगैर और दलील के, किसी दलील के जाने बगैर जो है अपने सरकश शैतान की जो है वो पैरवी कर रहे हैं। और फिर ये भी फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अल्लाह की बंदगी करते हैं, किनारे किनारे रह के जो है वो करना चाहते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस भाई जिस तरीके से किनारे से रहने का मतलब ये है कि बिल्कुल रेडी टू एग्जिट, आप जिसके साथ भी हैं तो किनारे पर रहने का मतलब है कि बस थोड़ी सी जो है कोई कैफियत ऐसी पहुंची, कोई इब्तला और आजमाइश आई, कोई मुश्किल वक्त आया तो फौरन एग्जिट कर दिया और दूसरी तरफ जो है वो चले गए। तो फरमाया कि ये लोग दरअसल ऐसे लोग हैं जो दीन और दुनिया के जो है खसारे में है। तो जिसने इस्लाम के ऊपर चलना है तो पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरे यकीन और ईमान के साथ, और बीज मंझधार और अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ इसके ऊपर जो है लगा के आए तो ही तब ही जो है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के यहाँ जो है उसका ईमान और उसकी कुर्बानियां और उसका चलना इस रास्ते के अंदर ही जो है वो अल्लाह ताला उस मकबूल होगा। फिर उसके बाद कुरैश जो है फरमाया कि ये जो आज काबा के मुतवल्ली बने हुए हैं, अब ये जो है जिस तरीके से अब ये अपने आप समझते हैं कि ये काबा की तौलियत और जो है सारी मुजावरी जो है ये उसके वो है, इसके इसके आप कह लें कि हकदार हैं। फरमाया गया कि नहीं, इसके असल हकीकी जो है मुतवल्ली जो है वो मुसलमान है। और फिर फरमाया कि इनकी जो जो इसके जो है ये लिजिटिमेट कस्टोडियन जो है मुसलमान ही होंगे और हकीकत में ये मुसलमान ही है। तो इसमें इस तरफ बात की तरफ इशारा है कि बहुत जल्द जो है मुसलमान और मुसलमानों को भी बता दिया कि देखें कि इस किबला से, इस काबा से कुरैश की इस सरदारी को खत्म करना और इस तौलियत को खत्म करना और ये जो कस्टोडियनशिप इन्होंने ली हुई है इस वक्त इसको खत्म करना तुम्हारी जो है जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पे मस्जिद हराम के हुकूक भी बताए गए हैं और फिर अहकाम हज की काफी तफसीली वजाहत यहाँ पे मौजूद है। इसी और इसी वजह से चूंकि हज के ये अहकाम यहाँ पे नाजिल हुई है तो यहाँ पे इसी वजह से जो है हज के मनासिक के हवाले से इस सूरत का नाम भी जो है नाम जो है वो लिया गया है। फरमाया कि हज की इबादत का हासिल ये है कि इंसान हर किस्म के शिर्क, झूठ और अल्लाह की नफरमानी से इज्तनाब करे और अल्लाह की जो है मुकम्मल इताअत की जो करे। और हज दरअसल बिल्कुल इसी ना सरेंडर का नाम है, अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देने का नाम है और अल्लाह ताला की विल के आगे अपने आप को जो है बिल्कुल आगे सरे तस्लीम खम कर देना है। कुर्बानी इसी तरह, चूंकि कुर्बानी भी इसके साथ रिलेटेड है हज के साथ, फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत तय फरमाई है और हलाल जानवरों को अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ही के नाम पे जो है वो ज़बह करो, किसी और के नाम पे ज़बह मत करो। फिर कुर्बानी की रूह भी बता दी कि कुर्बानी की स्पिरिट क्या है और इसकी तमाम दूसरी बातों की तरह यहाँ भी बताया है कि कुर्बानी की रूह स्पिरिट भी जो है वो तकवा है। इंसान अपनी ख्वाहिशात और जितने भी उसके महबूबात नफ्स हैं, कुछ बड़े पसंद है जिस चीज़ें दुनिया के अंदर, अल्लाह की मर्जी के सामने उनको जो है वो कुर्बान कर दे और मकसद अल्लाह की बड़ाई को कायम करने की कोशिश करना है, अल्लाह को बड़ा करना है, अल्लाह के कलमे को बड़ा करना है, अल्लाह के जो है वो दीन को जो है वो बड़ा करना है। फिर तीसरे हिस्से के अंदर इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियां बताई गई मुसलमान, और फिर खास तौर पर बताया गया कि मुसलमान जो मजलूम मुसलमान हैं जो अब तक परसिक्यूटेड थे, जिनको जुल्म का निशाना बनाया गया था और जिनको कहा गया था कि तुम किसी सूरत के अंदर तुम पे जितना भी जुल्म हो तुम हाथ नहीं उठा सकते, हाथ नहीं उठा मतलब कि तुम अपने आप को जो है वो डिफेंड तक नहीं कर सकते, कोई हथियार नहीं उठा सकते, अब उन्हें जो है किताल की इजाजत दी गई है। तो ये इज़्ने किताल जो है यहाँ पे दिया गया है इस सूरत के अंदर कि आप मुसलमान दिफाई तौर पर जो है अगर उनके ऊपर हमला हो तो फिर आप वो किताल की जो जिहाद की जो उनको जो ऐसा इजाजत है। फिर इस इसके अंदर जो है ये भी बात फरमाई कि अल्लाह ताला के दीन की मदद करने वालों को फरमाया अल्लाह ताला ने कि उसने अपनी नुसरत का वादा फरमाया कि जो अल्लाह ताला की दीन की नुसरत करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाएगा। और जहां ये बताया कि जिहाद का मकसद जो है जो 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 लड़ना है, ये जो है ये एक लिजिटिमेट जो है ये बैटल वॉर है, और इसमें जो इसका मकसद ये होना चाहिए कि इस्लामी रियासत का कयाम और इस्लामी निज़ाम का कयाम और उसको वहां पे कायम करना, ये इसका जो मकसद बताया गया। और इस्लामी रियासत की जो जो जिम्मेदारियों में चार जो है अहम बातें जो है चार सुतून बताए गए हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी, उसमें नमाज का कयाम है, इसमें पूरा निज़ाम का निज़ाम है, जो है ज़कात का पूरा निज़ाम है, किस तरीके से ज़कात जो है वो इकट्ठी होगी और किस तरीके से ज़कात जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, नेकी का हुक्म देना भी इसके शामिल है, और चौथी चीज है बुराई से रोकना। ये जो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियों में से ये जिम्मेदारियां, चार जिम्मेदारियां जो है वो गिनवाई गई। फिर फरमाया गया कि अगर ये जिहाद की, यानी इसमें हिकमत में एक ये भी चीज शामिल की गई, अगर जिहाद की इजाजत अल्लाह ताला ना देता तो फिर जो दुश्मन गालिब आ जाते, कुफर गालिब आ जाता, और कुफर के गालिब आने के मकसद ये मतलब ये है कि ये फसाद फिलार दे, ये जमीन के अंदर फसाद है और फिर जो है हर तरफ जो है फसाद ही फसाद होता, तो इसकी कला कमा करने के लिए जिहाद की जो है वो इजाजत दी गई है। फिर तकजीब करने वाली पांच चौथे हिस्से के अंदर ये जो झुठलाने वाली कौम है उनकी तारीख बताई दी गई, बता दी गई है, बताकर उनको जो है वॉर्न किया गया है कुफार मक्का को कि अगर तुमने ये रास्ता ये तर्क ना किया, ये रवैया, तो मुसलमानों के जरिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तुम्हें जो है वो हलाक कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जो है अल्लाह ताला मुसलमानों के जरिए से या किसी और जरिए से तुम्हें जो है तुम्हें तुम्हारे ऊपर हलाकत की जो वो है भेज देगा अल्लाह ताला, जैसे पहली कौमों को हलाक किया है तुम्हारे ऊपर भी कोई हलाकत की इस तरह जो है वो आफत आ सकती है तुम्हारे ऊपर। और ये पूरी इस तरीके से हुई कि जिस तरीके से देखे मुसलमान मदीना हिजरत कर गए, तो उसके बाद मुसलमानों के जरिए से अल्लाह ताला ने जंगों के जरिए से उनका कला कमा भी किया और बिलाखिर वो मकलूब हो गए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से अल्लाह ताला ने उनका जो है वो कला कमा कर दिया। और इसका तफसील जो है इसकी पूरी जो है सूरह मायदा के अंदर जो है वो मौजूद है। फिर पांचवें हिस्से के अंदर जो है वो तौहीद के फिर दलायल दिए गए, फरमाया कि ये खालिक और मखलूक जो है ये बराबर नहीं हो सकते दोनों। फिर दलायल रबूबियत से भी तौहीद को साबित किए गए, किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है ये चीजों को पैदा किया है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। फरमाया कि मिन दूनुल्लाह को पुकारना तो बहुत ही बुरा है कि ये कोई भी जो है अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पुकारोगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसको फिर एक तमसील से समझाया गया, फरमाया गया कि एक मक्खी की मिसाल है कि देखो अल्लाह ताला के इस अलावा दूसरे पुकारने वाले जो हैं उनकी हैसियत तो ये है कि उनसे अगर मक्खी गिजा का और खुराक का एक छोटा सा हिस्सा भी उड़ा के ले जाए तो इस पे भी कादर नहीं है कि मक्खी से वो गिजा का हिस्सा जो है छुड़ा के ले आए। तो किस तरीके से ये किस कदर कमजोर हैं, ये ज़ोफ़ुत तालिब व मतलू फरमाया कि किस तरीके ये पुकारने वाले भी और जिनको पुकारा जा रहा है वो दोनों किस कदर कमजोर हैं, और इस तरीके से जो है ये बड़ी जबरदस्त दलील दी गई है जो है वो खालिक और मखलूक की, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर मुसलमानों के लिए 10 नुकातिला अमल जो है यहाँ पे दिए गया है, मुसलमानों को बताया गया है किस तरीके से मुसलमान जो है वो इबादात के अंदर, अफाल खैर के अंदर, जिहाद कताल के अंदर, शहादत दीन, नमाज, ज़कात और ताल्लुक बिल्ला अपना जो है वो बेहतरीन करेंगे, अपना इसको बेहतर बनाएंगे और इन चीजों पे आमिल होंगे जिनका अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है यहाँ पे इन चीजों का। और इस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की जो है वो इताअत के अंदर जो है वो रहेंगे इस तरीके से। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी के लिए जो है वो जिद्दोजहद जो है ऐसे ही करो जैसे उसकी जिद्दोजहद करने का हक है। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमानों को इस मकसद के लिए जो है चुन लिया है कि तुम अल्लाह ताला के दीन की नुसरत और मदद और रियानत करोगे, और तुम लोगों के ऊपर, दुनिया के लोगों के ऊपर जो है वो गवाही दोगे, और गवाही किस चीज की दोगे, इस दावत की गवाही दोगे, इस जो अल्लाह ताला ने निज़ाम जो नाजिल किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और जो किताब नाजिल की है इसकी गवाही दोगे इसके अंदर जो है। और इसके गवाही देने का मतलब ये है कि तुम ये पैगाम अल्लाह ताला का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये पैगाम दुनिया के दूसरे लोगों के तक जो है लेके जाओगे, इस निज़ाम को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया इस निज़ाम को जो है कायम करोगे। और फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तुम्हारे ऊपर जो है कयामत के रोज इस बात पे गवाह होंगे, इस बात पे कि उन्होंने तो गवाही दे दी अब क्या तुमने भी लोगों दुनिया के लोगों को जो है फर्क पहुंचाने का ये काम जो है वो किया है कि नहीं है, तुम्हारी भी बाज पुरस होगी। तो यहाँ पे सूरह हज भी इसका बड़ा पावरफुल अख्तिताम है, जिस तरीके से जो आखिरी आयात है जिस तरीके से पावरफुल इसका जो है वो शुरुआत है, इस तरह अख्तितामी भी बहुत जो है वो इस तरह बहुत पावरफुल है और बहुत ही गौर व तदब्बुर का हामिल है, और जो है इसके बारे में इसके मजामीन को बड़ी तफसील के साथ समझने और पढ़ने की जो जरूरत है, क्योंकि उम्मत मुसलमा को और उनकी मकसद और उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से मुसलमानों को यहाँ पे जो है वो बताया गया है। और जहाँ पे इस तरह सूरह हज खत्म होती है, कल इंशाल्लाह ताला हम 18वें पारे के सीधे सीधे मजामीन का जायजा लेंगे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर।